लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। व्यभिचारिणी का आचरण ऐसा ही है, वह खाती, मुंह पोछती और कहती है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। तीन बातों से पृथ्वी कांपती है, चार को सहन नहीं कर पाती। राजा बनने वाला दास, भरपेट भोजन करने वाला मूर्ख, विवाह करने वाली कुत्सित स्त्री और अपनी मालकिन का स्थान लेने वाली नौकरानी। श्रोताओ, ये थी सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक के पदों में निहित आगूर की सूक्तियां। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन सूक्तियों में आगूर व्यभिचार के विरुद्ध हमें सावधान करता है। इस तथ्य पर हम गौर कर चुके हैं कि राजा सुलेमान के सदृशी आगूर ने भी अपने बेटे और छात्रों को सूक्तियों में ज्ञान दिया। निसंदेह उक्त पदों में व्यभिचारिणी स्त्री की चर्चा है, किन्तु ये सूक्तियां व्यभिचारी पुरुषों पर भी लागू होती हैं। श्रोताओं, व्यभिचार एक अप्राकृतिक कार्य है, यह पाप है, किन्तु व्यभिचारिणी स्त्री अथवा व्यभिचारी पुरुष इसे एक मामूली सा कार्य मानता है। उसके लिए यह उसके भोजन के समान एक सामान्य कार्य है, इसीलिए लेखक ऐसे लोगों की निंदा करता है। व्यभिचारी महिला अपनी भूख को संतुष्ट करती, फिर लापरवाही से अपना मुंह पोछती और खुद को निर्दोष मानती है, कहती है, मैंने कोई दुष्टता नहीं की। व्यभिचारी महिला या पुरुष यौन संबंधों को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे वे दिन के भोजन को देखते हैं। वे भोजन करते और निश्चिंत होकर बिना किसी अपराध बोध के आगे निकल जाते हैं। ऐसे व्यभिचारियों से सावधान रहने का आगूर हमें परामर्श देते हैं। फिर तीन और चार संख्याओं का उपयोग करते हुए आगूर ने चार चीजों की चर्चा की जो पृथ्वी को परेशान करती हैं। ऐसी चीजें जो मूल रूप से सही नहीं है, राजा बनने वाला दास, ऐसा सेवक जो दूसरों पर अधिकार जमाता हो, उसके पास न तो अच्छा प्रशिक्षण होता है और न ही सेवा का भाव, उसी तरह भरपेट भोजन करने वाला मूर्ख, वह अपने पेटूपन द्वारा अपनी ही मूर्खता को दर्शाता है, ऐसा व्यक्ति असहनीय हो जाता है। इसी प्रकार कुत्सित महिला भी असहनीय होती है, वह झगड़ालू होती है, व्यभिचारिणी और चालाक होती है, वह समाज का कलंक होती है और यदि वह अपनी मालकिन का स्थान लेने की जरूरत करती है तो वह और भी अधिक घृणित हो जाती है। ऐसे व्यभिचारी लोग घरों को फोड़ते और कलह का कारण बनते हैं। आगूर का परामर्श है कि व्यक्ति इन्हीं बुरी बातों से बचे, वह प्रभु पर श्रद्धा रखे और अपना मन भले कर्मों में लगाए। और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के 24 से लेकर 28 तक के पदों का पाठ करें। ये इस प्रकार हैं। पृथ्वी पर चार प्राणी बहुत छोटे किंतु बहुत समझदार होते हैं। चींटियां निर्बल होती हैं किंतु फसल के समय अपना भोजन एकत्र कर लेती हैं। बिज्जू बलशाली नहीं होते किंतु चट्टानों में अपना घर बना लेते हैं। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता किंतु वे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। छिपकली हाथ से उठाई जा सकती है किंतु वह राजाओं के महल में पाई जाती है। श्रोताओं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय में आगूर की सूक्तियां निहित हैं, जो विनम्रता, ईश्वर की शक्ति और व्यावहारिक बुद्धि पर केंद्रित हैं। यह अध्याय मानवीय ज्ञान और समझ की सीमाओं की तलाश करता हुआ इस तथ्य को प्रकाशित करता है कि सच्चा ज्ञान केवल ईश्वर से आता है, जो मानवीय समझ के परे है। 24 से लेकर 28 तक के पदों में आगूर इस संसार के सबसे छोटे प्राणियों की चर्चा करता है और हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराता है कि छोटे होते हुए भी इन प्राणियों का महत्व बहुत अधिक है, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगूर ने उन चार छोटे प्राणियों को गिनाया जो छोटे होते हुए भी बहुत बुद्धिमान है, उनमें अपार क्षमता है। उनकी बुद्धि को हम मनुष्यों ने प्रशिक्षित नहीं किया, अपितु वे जो कुछ कर सकते हैं वह सब उनमें स्वजात ही प्राकृतिक रूप से आ गया। अस्तु किसी को भी उसका कद देखकर छोटा न समझ लिया जाए, उसके अंतर की शक्ति को पहचाना जाए। यहाँ उन लोगों के लिए संदेश है जो अपने अहंकार और धन के घमंड के कारण दूसरों को अपने से छोटा मानते हैं। वस्तुतः श्रोताओं, आकार बुद्धिमत्ता का निर्धारण नहीं करता। बड़े भी मूर्ख हो सकते हैं और छोटे भी न केवल बुद्धिमान होते हैं बल्कि बहुत सक्षम भी हो सकते हैं। इन चार उदाहरणों को सूचीबद्ध कर आगूर ने बुद्धिमत्ता के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता जो बलशाली या विशाल कद वाला होता है, बल्कि वही बुद्धिमान होता है जो कद में छोटा होकर भी विनम्रता पूर्वक कुछ कर लेने में सक्षम होता है। चींटियां और बिज्जू उस समय काम करते हैं जब काम किया जा सकता है। वे आलसी नहीं होती, टाल मटोल करने वाले नहीं होते। तात्पर्य यही कि कड़ी मेहनत से व्यक्तिगत कमजोरियों पर काबू पाया जा सकता है। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, किंतु वे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं, यानी कि टीम वर्क से जीत हासिल की जा सकती है। और छिपकली का महलों में पाए जाने से तात्पर्य यही कि अपनी प्रतिभा और अद्वितीय कौशल का उपयोग करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगूर कहता है, पृथ्वी पर चार प्राणी बहुत छोटे किंतु बहुत समझदार होते हैं। चींटियां निर्बल होती हैं किंतु फसल के समय अपना भोजन एकत्र कर लेती हैं। बिज्जू बलशाली नहीं होते किंतु चट्टानों में अपना घर बना लेते हैं। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, किंतु वे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। छिपकली हाथ से उठाई जा सकती है, किंतु वह राजाओं के महल में पाई जाती है। श्रोताओं, इन रूपकों को प्रस्तुत कर आगूर युग युगांतर तक के स्त्री पुरुषों से आग्रह करता है कि वे अपने घमंड में चूर न रहें, अपने से किसी को भी छोटा न समझें, बल्कि उनकी क्षमताओं को पहचान कर उनका सम्मान करें, क्योंकि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी होती है तो हमारी बुद्धि और हमारी मानसिकता। इसीलिए व्यक्ति सभी सृजित प्राणियों का आदर करे और प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए उचित रीति से अपना जीवन यापन करे।
Thank you. आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को पोलैंड के राष्ट्रपति माननीय अंद्रेज दूदा से वैटिकन के प्रेरितिक प्रसाद में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन और वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलागा से भी मुलाकातें की। दूदा का राष्ट्रपति पद आधिकारिक तौर पर अगस्त 2025 में समाप्त हो रहा है। वे 2015 में पहली बार और 2020 में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए पारस्परिक सराहना दोहराई गई और देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर ध्यान दिया गया। यह भी कहा गया कि बातचीत के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें यूक्रेन में युद्ध पर विशेष ध्यान दिया गया। पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने संत पापा लियो 14वें के जुलाई माह के लिए प्रार्थना की प्रेरिताय का वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने विश्वासियों को आत्मपरक करने सीखने के लिए प्रेरित किया है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, सही निर्णय लेने के लिए आत्मपरक पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पोप की प्रार्थना की प्रेरिताय नेटवर्क द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह उद्देश्य जिसे संत पापा ने अपने विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क को सौंपा है, आत्मपरक को विकसित करने के लिए समर्पित है। वीडियो में दर्शाया गया है कि हम जीवन में अनंत संभावनाओं का सामना करते हैं जो हमें डराती और पंगु बना देती है, जिससे हमें जंगल में खोए हुए खोजकर्ताओं जैसा महसूस होता है। हम जानते हैं कि कहीं न कहीं एक रास्ता है, लेकिन हम हमेशा इसे आसानी से नहीं खोज पाते हैं। ब्रुकलिन धम्म प्रांत के सहयोग से पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क द्वारा निर्मित जुलाई के लिए पोप के वीडियो विशेष रूप से इस परिदृश्य को संबोधित करता है कि जंगल में चल रही एक युवती खो जाती है और उसे अपना रास्ता खोजने की जरूरत होती है। चारों ओर देखने, रुकने और खुद को अनावश्यक बोझ से मुक्त करने के बाद वह मानचित्र का उपयोग करके फिर से चलना शुरू करती है। पोप की प्रार्थना में हम संत अगस्तीन की प्रसिद्ध प्रार्थना की प्रतिध्वनि सुनते हैं। हे ईश्वर, मुझे स्वयं को जानने दीजिए ताकि मैं तुझे जान सकूं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संत अगस्तीन के अनुसार स्वयं का ज्ञान ईश्वर के ज्ञान की ओर ले जाता है। आत्मपरक करने के लिए ईश्वर के सामने स्वयं को सत्य में रखना, अपने अंदर प्रवेश करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। ये कदम ईश्वर के साथ एक सच्चे संबंध के माध्यम से पुनः जन्म लेता है। कलीसिया के इतिहास की शुरुआत से ही आत्मपरक का अभ्यास किया जाता है। बयान में कहा गया है कि आज आत्मपरक की प्राचीन कला शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज जिस गति से चीजें बदल रही हैं, उपलब्ध जानकारी की विशाल मात्रा जो हमेशा सच नहीं होती, एआई द्वारा बनाई गई स्पष्ट वास्तविकता और वैश्विक चुनौतियों की जटिलता के साथ साथ अन्य चीजों के कारण सही निर्णय लेने के लिए एक आत्मपरक की आवश्यकता है जो हमें अच्छी तरह जीने और ईश्वर के करीब आने की अनुमति देता है। वैटिकन प्रेस कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार आज सुबह पोप लियो 14वें ने पॉल षष्ठम सभागार में ग्रीष्मकालीन शिविर में भाग लेने वाले लगभग 310 बच्चों और युवाओं से मुलाकात की। उसके कुछ ही देर बाद यूक्रेन के 300 अन्य बच्चे एवं युवा भी उनके साथ शामिल हुए, जिनके लिए कारितास इटली ने ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया था। इस मुलाकात में पोप ने बच्चों से बातें की और कुछ सवालों के जवाब दिए। पोप लियो ने अपने बचपन पौत्र मिस्सा में भाग लेने, अन्य बच्चों और दोस्तों से मिलने और सबसे बढ़कर उस जगह के बारे बतलाया जहां उनकी मुलाकात उनके सबसे अच्छे दोस्त यीशु से हुई थी। उन्होंने विविधता एवं स्वीकार्यता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि एक दूसरे का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, मतभेदों पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि सेतु एवं मित्रता का निर्माण करना चाहिए। हम सभी दोस्त, भाई, बहन हो सकते हैं। वैटिकन ने संत पापा लियो 14वें के अगस्त एवं सितंबर महीनों में धम्म विधि कार्यक्रमों की सूची जारी की है। वैटिकन के धम्म विधि नायक महाधर्माध्यक्ष डिएगो रवेली ने बृहस्पतिवार को पोप के धम्म विधि कार्यक्रमों की सूची जारी की। धम्म विधि कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है। 3 अगस्त को पोप लियो रोम के तोर विरगाता में सुबह 9 बजे युवाओं की जयंती का पौत्र मिस्सा अर्पित करेंगे। 15 अगस्त कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण का महापर्व कस्तिल गंदोल्फो स्थित विल्ला नोबा के संत थॉमस परमधम पीठे पल्ली में सुबह 10 बजे समारोही पौत्र मिस्सा अर्पित करेंगे। 7 सितंबर को संत पेतुस महागिरजा घर के प्रांगण में पूर्वाहन 10 बजे धन्य पियर जोर्जो प्रसादी और धन्य कार्लो अकुतिस के संत घोषणा समारोह के अवसर पर ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। 14 सितंबर नए शहीदों की यादगारी में रोम के संत पॉल महागिरजा घर में शाम 5 बजे ख्रिस्त्याग समारोह होगा और 28 सितंबर 10 बजे संत पेतरुस महागिरजा घर के प्रांगण में प्रचारकों की जयंती के अवसर पर वे पुनः ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। और इस बीच पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को चीन के राजदूत माननीय अंतोनी चुंग यी हो का प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। चीन के राजदूत माननीय अंतोनी का जन्म 8 अक्टूबर 1969 को हुआ था। वे एक विवाहित कैथलिक हैं और 2 बच्चों के पिता हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ताइवान यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की है। साथ ही जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र के बाल निधि फंड ने एक चेतावनी जारी की है कि मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में संघर्ष के कारण हर 5 सेकंड में एक बच्चा अपने घर से दूर जा रहा है तथा हर 15 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है या घायल हो रहा है। 2025 तक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अनुमानित 45 मिलियन बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जो कि पिछले 5 वर्षों में 41% की वृद्धि है। यूनिसेफ ने पिछले 70 वर्षों से मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में बच्चों एवं परिवारों की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन अब चेतावनी दे रहा है कि फंडिंग की गंभीर कमी के कारण अब इसे चलाना मुश्किल होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।